जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानन्दन ब्रज जन रंजन यशोदानन्दन ब्रज जन रंजन यमुना तेरा वन सारी यमुना तेरा वन सारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानन्दन ब्रज जन रंजन यमुना तेरा वन सारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय jaya jaya Prabhupada 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 Nityagora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Bhuvana Mangala Hari Naam Sankirtana Ki Jaya Om Vishnuvad Paramahansa Vridaskacharya Stottar Shri Srimad Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Maharaj Ki ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की विताय गौर प्रेमानंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठके क्रम के अनुसार श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 9 श्लोक क्रम 12 शब्द इस प्रकार है यद् जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्म दंड हता अपि सागर आत्मजा दिवं जग्मो केवलं देह भस्मी यद् जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्म दंड हतायभि सगर आत्मजा दिवं जग्मो केवलं देह भस्मिभि यद् जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्म दंड हता अपि सगर आत्मजा दिवं जग्मो केवलं देह भस्मिभि यद् जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्म दंड हता अपि सगर आत्मजा दिवं जग्मो केवलं देह भस्मिभि यद् जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्म दंड हता अपि सगर आत्मजा दिव्यं जग्मो केवलं देह भस्मिभि यद् जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदण्डातापि सगर आत्मजा दिव्यं जगमो केवलं देहभस्मिभिः यज्जलस्पर्शमात्रेण ब्रह्मदण्डहतापि सगर आत्मजा दिव्यं जगमो केवलं देहभस्मिभिः यज्जलस्पर्शमात्रेण ब्रह्मदण्डहतापि सगर आत्मजा दिव्यं जगमो केवल देह भस्म भी माताजी यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्म दंडहता अभी सगर आत्मजा दिव्यं जगमो केवलं देह भस्मिभि यज्जलस्पर्शमात्रेण ब्रह्मदण्डहतापि सगर आत्मजा दिव्यं जगमो केवलं देह भस्मिभि यज्जलस्पर्शमात्रेण ब्रह्मदण्डहतापि सगर आत्मजा दिव्यं जगमो केवलं देह भस्मिभि शब्दारि प्रसाद है यज्जल जिसका पानी स्पर्श मात्रेण केवल स्पर्श करने से ब्रह्म दंड हता जो लोग ब्रह्म का अपमान करने के लिए दंडित हुए अपि यद्यपि सगर आत्मजा सगर के पुत्र दिवम स्वर्गलोक को जगो गए केवलम मात्र देह भस्म भी अपने भस्म शरीरों की बची राख से अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार है चूंकि सगर महाराज के पुत्रों ने महापुरुष का अपमान किया था अतएव उनके शरीर का ताप बढ़ गया था और वे जलकर भस्म हो गए किंतु मात्र गंगा जल के छिड़कने से वे सभी स्वर्गलोक जाने के लिए पात्र बन गए अतएव जो लोग गंगा की पूजा करने के लिए गंगा जल का प्रयोग करते हैं उनके विषय में कहना ही क्या तात्पर्य गंगा मैया की पूजा गंगा जल से ही होती है भक्त थोड़ा सा गंगा जल लेकर पुनः उस गंगा में चढ़ा देता है जब भक्त गंगा में से जल लेता है तो गंगा मैया की न तो कुछ हानि होती है और न ही जब भक्त उस जल को गंगा में डाल देता है तो कोई वृद्धि नहीं वृद्धि होती है न कोई वृद्धि होती है किंतु इस प्रकार के आराधिक लाभविंत होने से उस प्रकार भक्त भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम अर्थात पत्र फूल फल तथा जल चढ़ाता है तो हर वस्तु भगवान की होने से न तो कोई हानि होती है न लाभ मनुष्य को भक्तियों का लाभ उठाना चाहिए क्योंकि उससे किसी का कुछ जाता नहीं परंतु परम पुरुष की कृपा प्राप्त होती है ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम् वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुनवैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सभी भक्तों को पुनः सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए वंशाकल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो इस श्रीमद् भागवतम में जो प्रसंग चल रहा है, गंगा का अवतरण, भगीरथ महाराज द्वारा गंगा का अवतरण हो चुका है और आज के श्लोक में जो बताया गया है, जो उनके पूर्वज जो जलकर भस्म हो गए थे उनका उद्धार स्पर्श मात्रेण, गंगा जल का स्पर्श करने से उनका उद्धार हो गया। यद्यपि कई साल बीत गए थे बीच में, हजारों साल। जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की। तो कई साल बीत गए थे, फिर भी उनकी राख उधर थी और राख को स्पर्श करने से उसका उद्धार हो गया। और कितने थे वो लोग? 60,000 पूर्वज थे उनके। तो प्रसंग से सब अवगत है, फिर भी थोड़ा स्मरण कराने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। इसी सूर्यवंश में राजा बाहु करके राजा हो गए, जो अयोध्या में राज कर रहे थे, तो शत्रु से पराजित हो गए राजा बाहु। पराजित होने के कारण और शत्रु को आक्रमण बार बार होने के कारण वो जंगल में चले गए, उनके साथ उनकी पत्नियां भी थी। तो जंगल में जाने के कारण उसका जीवन उधर जंगल में बीता गया और वृद्धावस्था आ गई। फिर उसी जंगल में उनका शरीर त्याग हो गया। शरीर त्याग करने के बाद उनके साथ उनकी पत्नियां भी थी, तो उसमें से एक पत्नी ने अपने पति के साथ सती होने का निर्णय लिया। जब वे सती होने के लिए जा ही रही थी, तो उसी में उस आश्रम के अगल बगल में कहीं आश्रम होगा, तो उस आश्रम में एक ऋषि रहते थे, औरव नाम के ऋषि। तो उसने देखा कि राजा की पत्नी सती होने के लिए जा रही है, तो गर्भवती है। तो शास्त्र में गर्भवती महिलाओं को, गर्भवती स्त्री को सती नहीं होने के लिए निषेध बताया है। तो गर्भवती थी, तो उस ऋषि ने मना किया कि आप गर्भवती हो इसलिए आप सती नहीं हो सकती हो। तो ऋषि की आज्ञा मानकर उस रानी ने सती होने से सती नहीं हुआ। फिर वो गर्भ था उनके और राजा का, और सब और पत्नियां भी थी राजा की, तो वो सब द्वेष करने लगी उनसे। द्वेष होने के कारण उस जो गर्भवती रानी थी उसको सब मिलाकर उनको खाने में जहर मिला दिया उस रानी को। उनको पता नहीं था और वो जहर खा ली खाने के साथ। जहर खाने के कारण उसको कुछ नहीं हुआ और जब वो बच्चा जन्म लिए तब वो जहर जो उसने खाने के साथ आया था वो जहर अपने हाथ में लेकर वो बच्चा का जन्म हुआ। तो उस बच्चा का जहर के साथ जन्म होने के कारण उसका नाम सगर हुआ। स मतलब सात और गर मतलब जहर। तो सगर जहर के साथ उसका जन्म हुआ इसलिए उसका नाम सगर हुआ। तो सगर महाराज फिर उसी बहुत बलवान थे क्योंकि वो इतना ही प्रतापी और बलवान थे। उसका उसके माँ के गर्भ में जो जहर है वो भी कुछ नहीं कर सका। तो बाहर आने के और कोई शत्रु क्या उसका कर सकता है। तो उसी कारण वो महाप्रतापी और बलशाली था। तो फिर से वो अयोध्या का राज्य उसने पुनः वापस प्राप्त कर लिया और ऋषि के मार्ग दर्शन अनुसार आज्ञा अनुसार। फिर उसमें राज कर रहे थे वो अयोध्या के राज सिंहासन पर। फिर वो और ऋषि के आज्ञा अनुसार उसने अश्वमेघ यज्ञ करना आज्ञा दिया ऋषि ने। तो फिर सगर महाराज ने अश्वमेघ यज्ञ प्रारंभ किया। जैसे अश्वमेघ यज्ञ प्रारंभ किया तो इंद्र को पता चला कि सगर महाराज अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं। अगर वो यज्ञ पूरा हो जाएगा तो उनको भी भय लगने लगा इंद्र को कि मेरा स्वर्ग चला जाएगा छिन जाएगा। तो उस भय के कारण इंद्र ने वो सगर महाराज ने जो यश्व छोड़ा था घोड़ा छोड़ा था वो चुरा लिया। घोड़ा चुरा कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया और वो चले गए इंद्र। इंद्र ऐसा कार्य करते पृथ्वी महाराज ने भी ऐसा वो यज्ञ कर रहे थे उसी टाइम भी एक साधु का वेश बनाकर उनका घोड़ा भी चुरा लिए थे इंद्र ने। तो इसी प्रकार इधर भी घोड़ा चुरा कर वो कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिए। फिर सगर महाराज और उनके पुत्र जो 60,000 सुमति उसके सगर महाराज के दो पत्नी थी सुमति और केशिनी। तो सुमति के 60,000 पुत्र थे तो उनको आज्ञा दी कि आप घोड़ा ढूंढ कर लाइए। तो 60,000 पुत्र घोड़ा ढूंढने के लिए निकले। ढूंढते ढूंढते पूरे पृथ्वी को ढूंढा लेकिन कहीं मिला नहीं। फिर सब जानते हो खड्डा करके पाताल तक जा रहे थे ढूंढने के लिए। तो खड्डा इतना खोजा 60,000 मिलकर कि पूरा सागर बन गया। फिर भी घोड़ा नहीं मिला। फिर उस खोदते खोदते समय उस समय स्थान पर पहुंचे जहां कपिल मुनि का आश्रम था। तो वहां जाकर उसने देखा कि घोड़ा उधर बांधा हुआ था और कपिल मुनि तो अपने ध्यान में बैठे हुए थे। तो कपिल मुनि को न पहचानने के कारण और 60,000 पुत्र एक ही साथ बोलने लगे कि यह साधु है लेकिन चोर है, ध्यान में बैठा है, घोड़ा उसने सुराया और उसको मारो मारो करके सब बोलने लगे 60,000। ऐसा न जान के हुए ऐसा मारो मारो करके वो बोलने लगे तो अपराध कर दिया कपिल मुनि के चरणों में। तो अपराध के कारण अपने ही शरीर में उसका अग्नि बढ़ने लगा और अग्नि इतना बढ़ गया कि वो जलकर राख हो गए। तो इसी प्रकार जो व्यक्ति अपराध करते हैं निश्चित रूप में उसका आयु छीन होता है और अमंगल होता है और पुनः वो पतित भी हो जाता है। तो कपिल मुनि के शरण में अपराध होने के कारण और आचार्य कहते हैं कि व्यक्ति तीन प्रकार के कार्य करते हैं अपने कर्म के अनुसार। एक उसका पिछले जन्म का जो कर्म होता है उसी प्रकार वो इस जन्म में कार्य करता है और दूसरा अपने माता पिता के जो संस्कार होते हैं उस संस्कार के हिसाब से वो कार्य करता है और तीसरा जो वर्तमान में जो कर्म करता है उसी हिसाब से वो कार्य करता है। तीन प्रकार के कार्य करते हैं। पहले पूर्व जन्म का कर्म के अनुसार वो कार्य होता है उनका जीवन व्यतीत होता है। दूसरा उसी व्यक्ति में उसका माता पिता का संस्कार होता है संस्कार के हिसाब से वो कार्य करता है और तीसरा वर्तमान समय में जो कर्म करता है उसी हिसाब से वो उसका कार्य होता है। तो उन लोगों का जो सगर मुनि सगर महाराज के 60,000 पुत्र थे उनका तो पूर्व जन्म भी कोई ऐसा नहीं है कि कुछ गलत किया था, और उसका माता पिता सगर महाराज भी महाप्रतापी और बलशाली था उसका भी नहीं, लेकिन वर्तमान में जो उसने कर्म किया उसी का उसको फल भुगतना पड़ा। वर्तमान में उसने जो अपराध किया कपिल मुनि के शरणों में तो तुरंत उसको फल मिल गया, वो भस्म हो गए जलकर। तो महापुरुष जो हमारे आचार्य है वो कहते हैं कि व्यक्ति का पूर्व जन्म का कर्म वो अपने हाथ में नहीं है, जो वर्तमान में वो जी रहे हैं वो पूर्व जन्म का कर्म उसके हाथ में नहीं है, वो बदल नहीं सकता है, और जो माता पिता के द्वारा उनको संस्कार मिला है वो भी वो बदल नहीं सकते क्योंकि वो तो माता पिता के द्वारा उनको संस्कार मिला है, लेकिन वर्तमान समय में जो कार्य कर रहे हैं कर्म कर रहे हैं वो अपने हाथ में है, उसको कैसा कर्म करना चाहिए वो बदल सकता है अपनी इच्छा के अनुसार। कहीं भोग करना है अगर वो चाहे तो भोग से निवृत्त होकर भक्ति मार्ग में या सत मार्ग में आ सकता है, इसलिए उनका वर्तमान समय उनके हाथ में रहता है। तो आचार्य कहते हैं कि वर्तमान समय को देखते हुए हमें कार्य करना चाहिए, ताकि वर्तमान समय में हम गलत कार्य करेंगे तो हमारा भविष्य भी अधोगति को जाएगा और हमें पुनः 1,200,000 प्रकार के शरीर धारण करना पड़ेंगे, और वर्तमान समय में जो हम कार्य करेंगे वो अच्छा कार्य करेंगे, शास्त्र के अनुसार कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सदगति या उच्चलोक या भगवत धाम प्राप्त हो सकता है। तो वर्तमान समय हमारे हाथ में है, तो उसी समय वर्तमान समय को देखते हुए शास्त्र का आधार लेकर हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो सगर महाराज के 60,000 पुत्रों ने वर्तमान समय न देखते हुए कपिल भगवान के चरण में अपराध हो गया, और अपराध करने के कारण वो उसी समय अपने आप जलकर राख हो गए। तो जलकर राख हो गए तो फिर सगर महाराज के दूसरी पत्नी थी केशिनी, उनके एक पुत्र था अश्मंजस, एक सुमति के पुत्र 60,000 थे और केशिनी के एक ही पुत्र था, उनका नाम था अश्मंजस। अश्मंजस का मतलब उसका कार्य भी अश्मंजस था, कोई समझ में ना आया ऐसा कार्य। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि पिछले जन्म में वो वहां योगी थे और योग्य के कारण कुछ कुसंग के कारण उनका वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ और कुछ अधोगति के प्राप्त हुए, फिर बाद में वो इस सगर महाराज के पुत्र रूप में प्रकट हुए। और इस अश्मंजस जब इस सगर महाराज के पुत्र रूप में आए तो उनके पिछले जन्म का पूरा याद था उन्हें, जात सुनी थी कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, तो उनको पिछले जन्म का पूरा याद था, वो कैसे कैसे उसको कुसंग के कारण भ्रष्ट हो गए, फिर बाद में दूसरा जन्म लेना पड़ा, अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर सके। इस बात को स्मरण करते हुए वो इस राजकुमार होते हुए भी उनका कार्य कोई निश्चित नहीं था, कब क्या कर जाए वो कुछ कुछ ठिकाना नहीं, किसी को दिमाग में नहीं आ रहा था वो क्या कार्य कर रहा है। और कभी कभी तो ऐसा कार्य करते थे वो, सरयू नदी के तट पर बच्चों को लेकर जाते थे खेलने के लिए और किसी बच्चों को उठाया और सरयू नदी में डाल दिया और मार दिया, ऐसा वो कार्य करते थे। वो जानते थे पिछले जन्म में मुझे कुछ कुसंग के कारण मैं फिर से मुझे जन्म लेना पड़ा, लक्ष्य प्राप्त न कर सका, इसलिए वो कुछ ऐसा कार्य कर रहे थे जानबूझकर, वैसा कोई इसका मूर्ख के दिमाग नहीं था, ऐसा नहीं था, जानबूझकर ऐसा कार्य कर रहे थे। तो ऐसा कार्य करते थे बार बार, तो सभी अयोध्यावासी को अपने बच्चे खोने लगा, तो सब राजा सगर महाराज के पास गए कि हमारा बच्चा खो रहा है, कौन लेके जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ मालूम नहीं पड़ता है। तो सगर महाराज ने जब छानबीन की तब पता चला उनका ही पुत्र मार रहे हैं सब बच्चों को, तो बड़ा दुख हुआ सगर महाराज को इस घटना को देखकर जानकर कि उनका ही पुत्र मार रहे सब बच्चों को। तो सगर महाराज ने अपना पुत्र को ही अश्मंजस को अपने राज से निकाल दिया कि तुम निकल जाओ, मेरे पुत्र कहने के लायक नहीं हो, तुम हमारा प्रजा को दुखी कर रहे हो, तुम बच्चे को मार रहे हो, तो उनको निकाल दिया राज्य से। जब अश्मंजस राज्य से जा रहे थे फिर उनको ऐसा लगा कि नहीं नहीं मैं जाते समय कुछ दिखा कर जाऊं, तो फिर से वो अयोध्या में वापस आए और जितने बच्चे मारे थे वो सरयू में तो उनको फिर से वापस लेकर आए, क्योंकि वो अपने योग बल से उनको उधर रखा था। तो सभी बच्चों को लेकर आए और सगर महाराज कोई दिए और सभी जिनका माता पिता सबको बुलाया उधर और बुला के कहा ये आपका बच्चा है ले लो। और बच्चा ऐसा ही था जैसे पहले था ऐसे, कुछ उसमें कुछ हानि नहीं था, पूर्ण रूप से तंदुरुस्त। तो ऐसे बच्चों को दिया तब सब प्रजा को और महाराज सागर को बहुत दुख हुआ कि मैंने इतना अच्छा पुत्र था मेरा और मैंने सजा दे दिया उनको, देश निकाल कर दिया। फिर अपने आप पछताने लगे, फिर अश्वमंदस उधर रहे नहीं अयोध्या में, वो छोड़कर चले गए, राज छोड़कर और वन में चले गए और भगवान को भजन करके तपस्या करके वो भगवत प्राप्ति कर ली। फिर अश्वमंदस का पुत्र हुआ अंशुमान। फिर सगर महाराज ने कहा कि आप घोड़ा ढूंढने के लिए जाए, ईश्वर ढूंढने के लिए जाए, कहाँ है। फिर अंशुमान गए ईश्वर ढूंढने के लिए, तो जा रहे थे वो जो खोदे थे अपने पूर्वजों ने उसी तट पर जा रहे थे, तो जाते जाते वहां देखा उसने कपिल मुनि का आश्रम अंशुमान ने, और उधर जलकर राख हो गए, बड़ा राख का ढेर देखा, तो उसको समझ में आया कि इधर ही कुछ दुर्घटना हुआ है। फिर अंशुमान ने कपिल भगवान कपिल देव की बहुत प्रार्थना स्तुति की, वंदना की, इस भागवतम में आठवें अध्याय में है। फिर कपिल भगवान प्रसन्न होकर अंशुमान से कहे कि आपके पूर्वज इधर आए थे और ये जलकर राख हो गए। तो अंशुमान ने कहा इनका उपाय बताई उद्धार के लिए, उनको मालूम था कि निकी उसका दुर्गति हुआ है, तो अपने पूर्वजों को उद्धार करने के लिए उपाय बताने के लिए प्रार्थना की कपिल भगवान से। तो कपिल भगवान ने बताया अगर आपका पुत्र आपका पूर्वज को उद्धार करना है तो आपको गंगा जी लाना पड़ेगा इधर स्वर्ग से, अगर गंगा जी से उसका स्पर्श हो जाएगा तो निश्चित रूप में उनका उद्धार हो जाएगा। तो इस आज्ञा को लेकर अंशुमान तपस्या करने लगे। तो इसे गंगा अवतरण के लिए कपिल भगवान ने तीसरे स्कंद में 28 नंबर अध्याय 22 नंबर के श्लोक में भी थोड़ा वर्णन किया है कि गंगा का क्या महत्व है। यत शोषम निःसृत सरितम प्रवर उदकेन तीर्थेन मुग्ध अधिकृतेन शिव शिव अभूत दयातु मना शमल शोषल निःसृष्ट वज्रम धायतन शिरम भगवत शरण अरविंदम। तीसरे स्कंद में भगवान कपिल कहते माता देवती को उपदेश देते हुए कि भगवान के शरणों में से जो सरिता बहती है, गंगा जी बहती है, जो भगवान के शरणों को पखालते हुए जो प्रकट थेल गंगा, वो सभी जीवों को पावन करने वाली है। और पावन इसलिए करते हैं क्योंकि वो भगवान विष्णु के शरणों से निकले है। और वे गंगा शिव के शिर पर शिव धारण करके जो पहले शिव थे फिर महाशिव हो गए, क्योंकि भगवान के शरणों में निकले हुए गंगा शिव ने अपने मस्तक में धारण की, तो इसलिए वो महाशिव हो गए, महादेव हो गए। तो इस बात को कपिल भगवान तीसरे स्कंद में बताते हैं। तो इसलिए गंगा का इतना महत्व है क्योंकि वो भगवान के शरणों से निकली हुई है। तो इसलिए अंशुमान को कहा कि आप अगर गंगा जी को अवतरण कराएंगे तो निश्चित रूप से आपका पूर्वज का उद्धार होगा। फिर अंशुमान तपस्या करने लगे, बहुत साल तपस्या किए और गंगा जी अवतरण कराने में वो असफल रहे। फिर उनका पुत्र हुआ दिलीप, उसने भी इतनी तपस्या की पूरा जीवन भर तपस्या करने के बाद भी वो भी असफल रहे, दिलीप महाराज भी। फिर दिलीप महाराज का पुत्र हुआ भगीरथ, फिर भगीरथ ने वही अपने पूर्वजों को उद्धार करने के लिए तपस्या की, और भगीरथ महाराज की 10,000 साल की तपस्या के कारण गंगा मैया उनके सामने प्रकट हुई, और प्रकट होने के बाद भगीरथ को कहा आप जो चाहे वो वर मांग सकते हो मेरे से, आपको क्या चाहिए। तब भगीरथ महाराज ने कहा कि हमारे पूर्वजों महान संत जो भगवान कपिल देव के चरणों में अपराध करने के कारण वो भस्म हो गए हैं, उनको उद्धार करने के लिए आप इस धराधाम पर अवतरण हुई है। तब गंगा मैया ने कहा ठीक है मैं अवतरण तो होंगी, लेकिन मेरी दो समस्या है। एक है कि मैं जब स्वर्गलोक से नीचे उतरूंगी तो मेरी धारा इतनी वेग पूर्वक होगी तो मेरी धारा इस पृथ्वी को फाड़कर सीधे रसातल में चले जाएंगे, तो उस धारा रोकने के लिए कोई चाहिए। और दूसरी समस्या है कि मेरे में इस पतित जीव जो कलयुग में आने वाले जीव सब स्नान करेंगे और स्नान करने के कारण उनका पाप सब मेरे जल में छोड़ देंगे तो मुझे भी अदूषित और पाप लगेगा, तो उस भय से मैं, ये दो मेरी समस्या है, इस समस्या का कुछ उपाय सोचिए आप, फिर मैं अवतरण होंगी। तब भगीरथ महाराज ने कहा कि आप पहले कहा कि आप कह रहे हैं कि जो पतित है पापी जीव आपके जल में स्नान करेंगे और आपको पाप से भय है, लेकिन उस साथ साथ में पृथ्वी में कई महान संत भी हैं, जो संत तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि रूपा तात्पर्य में लगते हैं कि तीर्थों को भी पवित्र करने वाले ऐसे संत महाजन है जो आपके जल में स्नान करने से जो पापी लोग स्नान करते हो सारा पाप धो जाएंगे। तो इसलिए पहले समस्या और क्यों धो जाएंगे, अगर गंगा माता पूछे कि ऐसा क्या है संतों में कि जो स्नान करने से मेरा जो पापी लोग पाप करते हैं वो स्नान करने के उनका पाप धो जाएंगे, तो महाराज भगीरथ कहते हैं क्योंकि आप तो भगवान विष्णु के शरणों से निकले, लेकिन जो वैष्णव है जो महान संत है वो साक्षात विष्णु को ही अपने हृदय में धारण करते हैं, अपने हृदय में धारण करने के कारण जो स्नान करेंगे तो निश्चित रूप से आपका पाप सब चला जाएगा। तो इसलिए गंगा माता वो उस बात से प्रसन्न हो गई। और दूसरा उपाय के लिए भगीरथ ने कहा मैं शिव जी की तपस्या करूंगा और शिव जी अपने जटा में आपको धारण करेंगे। फिर बाद में भगीरथ महाराज ने कई सालों तक शिव जी की तपस्या की, फिर बाद में शिव जी भी प्रसन्न हो गए और शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा आपको क्या चाहिए। तब भगीरथ महाराज ने कहा कि गंगा जी अवतरण होने वाले हैं तो उनकी वेग को रोकने के लिए आपके अलावा और कोई समर्थ नहीं है, तो आप उन वेग को रोकिए। तो शिव जी तो गंगा जी का महिमा जानते थे क्योंकि विष्णु की शरणों से निकले हुए हैं, तो अपने आप को धन्य मानने के लिए शिव जी तुरंत राजी हो गए। और तुरंत राजी होने के कारण फिर भगीरथ महाराज ने गंगा मैया से प्रार्थना की और गंगा मैया का अवतरण हुआ। और अवतरण होने के बाद शिव जी ने अपने जटा में धारण किया और जटा में धारण करने के बाद फिर बाद में इस पृथ्वी लोक पर आई। और पृथ्वी लोक पर आने के बाद चलते चलते गंगोत्री से गंगा सागर तक पहुंची और जहां सगर महाराज के 60,000 पुत्र जलकर राख हो गए थे, पर आज के श्लोक में उसका स्पर्श मात्रेण गंगा जी का स्पर्श करने से उसका उद्धार हो गया, वो स्वर्ग लोक चले गए। तो इसी तरह गंगा मैया का इतना प्रभाव है क्योंकि वो विष्णु के शरणों से निकली हुई है। तो इसी तरह गंगा में स्नान करने से सभी का पाप धो जाता है और उसका मंगल होता है, कल्याण होता है। और प्रभुपाद की कृपा से जो गंगा मैया भगीरथ ने जो गंगोत्री से गंगा सागर तक पहुंचाया है, उसी प्रकार नाम और भागवत रूपी गंगा श्री प्रभुपाद ने इस भारत से सारे विश्व में बहाया है नाम रूपी और भागवत रूपी गंगा को। और उस गंगा जो भगीरथ द्वारा गंगा जो प्रकट है भारत में, वो खाली भारत में ही लोगों को पवित्र करते हैं और ये नाम रूपी और भागवत रूपी गंगा सारे विश्व में लोगों को पवित्र करते हैं। और इतना ही नहीं, उस गंगा में स्नान करने से हमारा पाप धोते हैं, पाप धुलते हैं, लेकिन हमारा पाप करने की वृत्ति हमारी वासना वो नष्ट नहीं होती है। परीक्षित महाराज ने उठाया प्रश्न, सुखदेव गोस्वामी जब पंचम स्कंद में वर्णन कर रहे थे अन्य अन्य लोगों का, फिर बाद में नरक का वर्णन किया सुखदेव गोस्वामी ने, तब परीक्षित महाराज कहते हैं इन नरक से लोगों कैसे बचेंगे, इन लोग कलयुग में तो पराये सब लोग पापी होंगे, तो सब लोग नरक में जाएंगे, तो नरक से बचने का उपाय बताइए। तब सुखदेव गोस्वामी अलग अलग बताते, तप करने से, तीर्थ में स्नान करने से लोगों का पाप नष्ट हो जाएगा। तब परीक्षित महाराज कहते हैं उनका पाप नष्ट हो जाएगा लेकिन उनका पाप करने की वृत्ति नष्ट नहीं होगी, क्योंकि उधर कुंजर स्वस्थ होगा। जिस प्रकार हाथी स्नान करते हैं लेकिन स्नान करने के बाद फिर बाद में धूल डाल देते हैं, उसी प्रकार लोग गंगा में जाकर तीर्थ में जाकर स्नान करने के बाद अपना पाप तो धोएंगे लेकिन आने के फिर बाद में पाप प्रवृत्ति करेंगे। हम देखते आज भी कुंभ मेला में लोग जाते हैं, जाकर अपना पाप धोकर आते, फिर बाद में वही प्रवृत्ति रहती है पाप करने की, चार पाप में लगे रहते हैं, तो उस स्नान से क्या फायदा। परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव गोस्वामी से उस स्नान से कुछ फायदा नहीं, लेकिन जो भागवत और नाम रूपी गंगा में स्नान करेगा कोई व्यक्ति, तो उनके पाप करने की वृत्ति और वासना नष्ट हो जाएगी। तो इस प्रभुपाद की कृपा से आज हम देखते हैं पूरे विश्व में सभी लोगों को पाप पुण्य की वृत्ति जो वासना है वो नष्ट हो रही है। इसलिए भागवत और नाम रूपी गंगा में हमें स्नान करना चाहिए। और इसी का उदाहरण है जगह मदाई, जो गंगा के तट पर ही रहते थे, गंगा के तट पर ही और जगह मदाई रहते थे, लेकिन उनका उद्धार हुआ हरिनाम में। उद्धारी लोग जगह मदाई, जगह मदाई का उद्धार हुआ हरिनाम से, साधु की कृपा से, गुरु की कृपा से, नित्यानंद प्रभु की कृपा से। तो इसलिए ये नाम रूपी गंगा में हमें स्नान करना चाहिए, भागवत रूपी गंगा में स्नान करना चाहिए, और प्रभुपाद की कृपा से सारे विश्व में आज उनका लोग, सभी लोग इसका फायदा ले रहे हैं और अपने आप को पवित्र कर रहे हैं। जो अपने आप, जो अपने में पाप करने की वृत्ति है वो उसको नष्ट कर रहे हैं। तो गंगा मैया का भी महत्व है, इतना ही, उतना ही उससे भी ज्यादा महत्व है नाम, और इस कलयुग में विशेष करके भागवतम और नाम, कली काल नाम रूप कृष्ण अवतार। इस कलयुग में नाम रूप में भगवान का अवतरण हुआ है, तो उस नाम को ग्रहण करके हमें अपने जीवन को सफल करना चाहिए। और गंगा मैया का भी इतना ही महत्व है, लेकिन इस कलयुग में विशेष करके नाम का युग धर्म होने के कारण नाम का और अधिक महत्व है, क्योंकि हमारा हृदय में जो धूल लगा हुआ है चेतो दर्पण मार्जनम, वो गंगा में स्नान करने से नहीं जाएगा। हमारा मन में जो हमारे चित्त में मैल है वो नाम रूपी गंगा में स्नान करेंगे तभी हमारा वो मैल नष्ट होगा। हमारे जो दुर्गुण है, हमारा अनर्थ है, वो नाम रूपी और भागवत रूपी गंगा में स्नान करेंगे तभी हमारा नष्ट होगा। तो इसलिए प्रभुपाद की कृपा से हमें अवसर मिला है इस नाम रूपी और भागवत रूपी गंगा में स्नान करने का, तो उसमें स्नान करना चाहिए। और सगर महाराज के 60,000 पुत्र गंगा के स्पर्श मात्र से उनका उद्धार हो गया, स्वर्गलोक चले गए। और इसी एक दो श्लोक है उनके बाद, फिर बाद में फिर से इस सूर्यवंश का वर्णन शुरू होगा। और संत गोपी प्रभु कह रहे थे कि जगन्नाथ जी की लीला भी अनावश्यक शुरू हो गया, तो ये कहना चाहिए, लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ तो आप बताइए, मुझे अभी आया तब बताया संत गोपी प्रभु ने। तो छोटा सा मैं एक जगन्नाथ जी की कथा बताऊंगा, फिर बाद में समाप्त करेंगे। तो जगन्नाथ भगवान अनावसर में है, तो उसके भक्तों के साथ आदान प्रदान होता है, तो ऐसे एक भक्त जगन्नाथ भगवान के जगन्नाथपुरी में रहते थे, तालिशा महापात्र, सभी भक्त जानते होंगे। लेकिन इस जगन्नाथ जी का रथ यात्रा और उत्सव चल रहा है, तो स्मरण करने के लिए इस कथा को मैं कह रहा हूं। तो तालिशा महापात्र जो जगन्नाथ जी के मुख्य पुंजारी में थे, तो जगन्नाथ जी की पूजा करते थे वो। तो एक दिन राजा सुबह सुबह में आ गया जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। तो जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए आए, तो जगन्नाथ जी को वो तालिशा महापात्र ने हार नहीं पहनाया था, और सुबह में मंगला आरती का हार जो निकला था वो उसने खुद पहन लिया था तालिशा महापात्र ने। सुंदर हार था, जयफूल का सुगंधित वो हार उसने पहन लिया, तालिशा महापात्र ने पहन लिया था, ग्रहण कर लिया। और उसी समय सुबह में राजा जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए आए, तो दर्शन करने के लिए, और राजा का नियम था जब वो दर्शन करने के लिए तो जगन्नाथ जी की कृपा उनको मिलना चाहिए, उनका हार मिलना चाहिए। तो अभी तो जगन्नाथ जी के गले में हार नहीं था, तो उनको समाचार मिला कि राजा आ रहे दर्शन करने के लिए, चालीसा महापात्र को। तो तुरंत वो दौड़ के गया जगन्नाथ जी के गृह गृह में, तो जाकर जो अपने हार पहना था वही जगन्नाथ जी के गले में डाल दिया चालीसा महापात्र ने। और चालीसा महापात्र लंबा लंबा बाल रखते थे, तो वही हार डाल दिया। फिर राजा आया दर्शन के लिए, जगन्नाथ जी का दर्शन किया, दंडवत प्रणाम किया, और वो हार जगन्नाथ जी का निकालकर फिर से राजा को पहना दिया चालीसा महापात्र ने। तो हार पहनाया, फिर राजा चले गए अपने निवास स्थान पर, और वो प्रसन्न होकर वो हार को देख रहे थे, जगन्नाथ जी की कृपा को देखते देखते वो सोच रहे थे कितना सुंदर हार है और जगन्नाथ जी की कृपा मुझे प्राप्त हुआ। तो देखते देखते उसमें एक लंबा बाल दिख गया उनको हार में, राजा को। तुरंत उनको शंका गया कि जगन्नाथ जी का हार मुझे दिया है, तो जगन्नाथ जी को तो बाल है नहीं, तो इसमें हार में बाल कहाँ से आया और इतना लंबा। निश्चित रूप में जगन्नाथ जी की सेवा में कुछ अपराध हो रहा है। तो फिर उसने छानबीन की, और वो तो महापुंजारी थे ही, चालीसा महापात्र, तुरंत उनको बुलाया राज्यसभा में और कहा कि हार में ये बाल कहाँ से आया, इतना लंबा क्या हो रहा है इधर, बताइए। तो चालीसा महापुत्र पात्र के मुख से निकल गया कि ये बाल है ना जगन्नाथ जी का है। तो राजा ने देखा, सुना क्यों, मैंने तो आज तक मैं रोज दर्शन करता हूँ, जगन्नाथ जी का इतना बड़ा बाल कभी से हो गया, होता है तो छोटा छोटा बढ़ के बढ़ता है ना, तो एक साथ में इतना बड़ा बाल कभी से हो गया, जगन्नाथ जी को बाल है नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तो चालीसा महापात्र ने कहा, नहीं उसका बाल, इसका जगन्नाथ जी का बाल है, आपने दर्शन किया ही नहीं ठीक से, बाल उन्हीं का ही है। तो राजा ने कहा, कल सुबह मैं आऊंगा दर्शन करने के लिए, अगर हार जगन्नाथ जी का बाल नहीं होगा तो मैं तुमको मृत्यु दंड दूंगा, और अगर बाल जगन्नाथ जी को अगर बाल है तो मैं आपको जो चाहे वो वरदान दे दूंगा। तो चालीसा महापात्र ने कहा ठीक है, और चले गए अपने घर और जगन्नाथ जी को प्रार्थना करने लगे। अभी तो बोल दिया कि जगन्नाथ जी का बाल है, तो अभी कल राजा आएगी तो क्या होगा, तो चिंता में पड़ गए और सोचने लगा, जगन्नाथ जी को प्रार्थना करने लगे कि कुछ कीजिए जगन्नाथ जी, मैं इतने साल से सेवा कर रहा हूं, मैंने आपके शरण में अपराध किया, राजा के सामने झूठ बोल दिया, मैं बचपन से आपकी सेवा कर रहा था और मैं इतना दुर्भाग्य हूं कि मैं इतना पापी हूं कि झूठ बोल दिया, और आपने मुझे पालकर बड़ा किया है, जिस तरह एक सांप के बच्चों को दूध पिलाकर पालते उसी प्रकार मैं सांप का बच्चा हूं, ऐसे अपने आप को कोसने लगे, अपने आप को हीन समझने लगे, अभी आप ही मुझे बचाइए, आपकी जो इच्छा होगी वही होगा। इसी प्रकार उनका प्रार्थना में पूरा रात चला गया, और जैसे ही रात समाप्त होने वाली थी और वो थोड़े झपकी आ गए उनको, तो जगन्नाथ जी उनको सपने में आए और कहे, आप क्यों इतना भय कर रहे हो, इतने साल से सेवा कर रहे हो, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तो आप डरिए मत, जो होगा कल सुबह मैं देख लूंगा, जगन्नाथ जी ने कहा। तब चालीसा महापात्र को सांत्वना मिला, फिर सुबह हुआ और जगन्नाथ जी के दरबार में गए, चालीसा महापात्र और दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना किया, फिर श्रृंगार हुआ जगन्नाथ जी का, फिर राजा आया दर्शन करने के लिए। तब चालीसा महापात्र बाहर खड़े थे, राजा का इंतजार कर रहे थे, तो राजा ने कहा कि जगन्नाथ जी का बाल है, आपने देखा सुबह सुबह में, तो चालीसा महापात्र ने कहा, मैंने तो देखा, मैं तो कहा ना बाल है, लेकिन आप जाकर खुद देख लिए, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तब राजा गए उधर दर्शन करने के लिए, तो दर्शन करने के लिए जगन्नाथ जी के पीछे के मुड़ पीछे गए, तो जगन्नाथ जी का बड़ा बड़ा बाल था, सिंहासन तक इतना बड़ा घुंघराले बाल जगन्नाथ बलदेव का, आश्चर्य सकित हो गए राजा, अरे इतने दिन से मैं दर्शन कर रहा हूं, कभी दर्शन नहीं हुआ बाल का, आज इतना एक ही साथ इतना बड़ा बाल कहां से आ गए। तो उनको लगा, मन में शंका हुआ कि ये पुंजारी है ना, उसे लगता है चिपका दिया है बाल, जगन्नाथ जी का बाल इतना बड़ा एक दिन में हो ही नहीं सकता, उनको शंका हुआ। तो शंका के कारण वो सोचने लगे कि बाल चिपका है, गम से चिपका दिया है जगन्नाथ जी को बाल, तो उसने परीक्षा लेने के लिए जगन्नाथ जी का बाल की एक लट पकड़ा और खींचा। जैसे खींचा तो उसमें लोहे की धारा निकली, पिचकारी निकली जगन्नाथ जी के सर से, जैसे बाल खींचा तो अरे राजा मूर्छित होकर गिर गई। अरे मैंने जगन्नाथ जी के शरण में कितना बड़ा अपराध कर दिया। उस माँ पुंजारी का बात पर मुझे विश्वास नहीं आया, उसका वो अपने आप को कोसने लगा और मूर्छित होकर गिर गया राजा। कि भगवान के मेरे कारण भगवान को कष्ट सहना पड़ा कि मैंने खींचा बाल और लोही निकला, खून निकला। तो इसे राजा को बहुत पछतावा हुआ, फिर दौड़ कर गया और तालीसा महापात्र के शरणों में गिर गया कि मुझे क्षमा कीजिए, आपके शरणों में अपराध किया है मैंने, आपकी बात पर मैंने विश्वास नहीं किया, तो आप क्षमा कीजिए। फिर तालीसा महापात्र ने कहा कि नहीं नहीं आप तो ठीक, आप सही है, लेकिन जो लीला करते वो जगन्नाथ जी लीला करते हैं, उनकी लीला किसी को समझ में नहीं आता है। इसलिए जगन्नाथ जी की ऐसी लीला बार बार होती है और अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान चलता है। कई लीला ऐसी जगन्नाथ जी की जगन्नाथपुरी में घटित होती है, आज भी जगन्नाथ जी लीला करते हैं। तो इसी प्रकार अपने भक्तों को कृपा देने के लिए, अपने भक्तों को आदान प्रदान करने के लिए, और जो इसी प्रकार इस कथा को, इस प्रसंग को सुनते हैं, तो अपने आप अपने को विश्वास बढ़ता है भगवान के प्रति कि नाना साक्षात भगवान है विराजमान, उनकी कृपा के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए और सभी को कृपा देने के लिए जगन्नाथ जी साक्षात विराजमान है। श्रद्धा बढ़ती है हमारी ऐसा प्रसंग सुनने से, और ऐसा प्रसंग नित्य चलता है जगन्नाथ जी के जगन्नाथपुरी में। तो इसी प्रकार अपने भक्त को आदान प्रदान करने के लिए जगन्नाथ जी ऐसी लीला करते हैं, और भक्तों को प्रसन्न करने के लिए और भक्तों को विश्वास बढ़ाने के लिए ऐसी कथाएं, ऐसी लीलाएं जगन्नाथ जी करते हैं। तो इसी प्रकार प्रभुपाद की कृपा से हमें ये जगन्नाथ भगवान का, चैतन्य महाप्रभु का और वैष्णव का जो महत्व हम समझे हैं, उसी महत्व को प्रभुपाद का पूरी पूरी प्रशंसा और उनके शरणों में प्रार्थना करते हुए अपना जीवन सफल बनाने के लिए और अपना जीवन धन्य बनाने के लिए और अंत हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। और वर्तमान जो हमारे वर्तमान आचार्य कहते हैं कि वर्तमान समय हमारा हाथ में है, हमें क्या करना है, पूर्व जो हमारा पूर्व जन्म का जो कर्म है वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारा माता पिता का संस्कार वो भी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन वर्तमान हमारे हाथ में है। हमारा वर्तमान हमें कैसे क्या करना चाहिए, क्या कार्य करना चाहिए, और हम और इस वर्तमान को देखते हुए हमें अपना जीवन शास्त्र के आधार पर, वैष्णव के आज्ञा अनुसार, गुरु के आज्ञा अनुसार हमें बिताना चाहिए। और इसी प्रकार आप सभी वैष्णव हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम भी वैष्णव और गुरु और शास्त्र के आज्ञा अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें और अपने जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सके। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद महाराज की। निताय गौर प्रेमानंदी।